Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सच्चा सुख वो है जो हमारी अंतरात्मा तक पहुंचे, ना कि सिर्फ शरीर का सुख। जिंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, चाहे वो हमारे एम्स हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो खुद के साथ भी रिश्ता हो। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर हम अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंतरात्मा में सेटिस्फैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको पूरी दुनिया खूबसूरत ही नज़र आएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच
डॉक्टर साहब। यूथ की बात हो रही है, यूथ के अंदर में कहीं ना कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनका उन्हें ध्यान देना पड़ता है, जिसमें एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है ऑफिस की, क्योंकि उन्हें आगे चल के शायद अपनी फैमिली को बनाना होता है, उन्हें सेटल करना होता है। तो ऐसे में सही तरीके की अर्निंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार वर्क में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जिसे हम चाह करके भी कोप अप नहीं कर पाते, ऐसे में क्या किया जाए?
बोझ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बुरा वो होता है जो हम अपने सिर पे लाद लेते हैं। काम को कई बार हम वन सिंगल पर्पस ऑफ लाइफ बना देते हैं, और उसमें भी कि अगर अभी अगले 5 सालों के अंदर ही मैंने सब कुछ नहीं कर लिया तो शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी।
True.
एक पर्सपेक्टिव की बात है। अगर आप कुछ समय पहले देखें तो उस पर्सपेक्टिव में लोग धीरे धीरे काम के माहिर बनते थे, फिर ग्रोथ होती थी, फिर उसके बाद ऊंचाइयों पे चढ़ते थे, और वो 50s में या 60s में समझा जाता था कि वो व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से अपनी पीक पर पहुंचा। अभी हम वो पीक 25-30 की उम्र में लेना चाहते हैं, उसके बाद क्या? पैसा ज़रूरी है काम के लिए, लेकिन अगर हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, और जिस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा वो हम अच्छा नहीं करेंगे, और अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस में अगर चलना है तो पहली चीज़ वो काम करें जो काम करने में आपको अच्छा लगता है
जी।
दूसरी, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलें जिसकी सोच आपकी सोच जैसी है। कई बार हमें पता होता है कि यहाँ पे बहुत कंपटीशन होगा, बहुत प्रेशर्स होंगे, लेकिन पैसा थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसलिए हम उसमें चले जाते हैं, और 6 महीने तक हम अपने आप को टोटली बर्नआउट कर लेते हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि काम बोझ है। उस जगह पर, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, आज के समय में सबसे ज़्यादा 24 घंटे में से वो समय बीतता है।
करेक्ट।
आंकड़े ये बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1/2 से 2/3 तक अपने दिन को लोग काम में बिताते हैं। तो वहाँ का एक तो फिज़िकल एनवायरनमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एनवायरनमेंट से मतलब है सही लाइट, सही बैठने की जगह, सही नॉइज़ लेवल बिल्कुल कम हो तो बहुत अच्छा, और दूसरा इमोशनल, यानी वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो प्रेशर्स हैं वो आपके लिए सहनीय हैं, क्या आपका सोचने का ढंग उन लोगों जैसा ही है, क्या आपको वहाँ पे जाके रोज़ तो नहीं लगता कि ओ माय गॉड मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, यहाँ पे तो मैं होना नहीं चाहता। या अगर आप हर समय ये सोच रहे हैं कि मेरी पोजीशन क्या है, बाहर बोर्ड क्या लगा हुआ है, तो फिर आप बाहरी चीज़ों में फंसे हुए। आपने जो सीखा है उसको पूरी तरह से देने में या तो सक्षम नहीं है और या आपका फोकस नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो वो काम को आप ज़्यादा देर तक नहीं आगे ले जा पाते। दूसरी बात यह है कि वो काम जो कि हमने अच्छी तरह से किया है और अच्छी तरह से करने के कारण हम उसको माहिरी उसमें हासिल कर लेते हैं
जी,
तो वो जो है वो फिर हमें धीरे धीरे आसान लगना शुरू हो जाता है, और हम जब उसे डिलीवर करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को हमारी जो एफिशिएंसी है वो पता लगनी शुरू हो जाती है। काम उतना रखें जितना कि आप फिजिकली कर सकते हैं। काम मेंटली एग्जॉस्टिंग भी हो सकते हैं, और उसका मेंटल एग्जॉस्टन का सबसे बड़ा कारण होता है तनाव, या तो डेडलाइंस जो कि दूसरों ने सेट की, और कई बार वो डेडलाइंस जो मैंने अपने लिए सेट की। और कई बार वो डेडलाइंस अनरियलिस्टिक इसलिए होती हैं क्योंकि हम ये दिखाने के लिए कि हम दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट हैं, या हम दूसरों से ज़्यादा सक्षम हैं, या मैंने दूसरों से ज़्यादा पढ़ा हुआ है, हम कई ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो हम कर नहीं पाते। तो फिर जब एम्प्लॉयर चाहता है कि आप वो काम करें और आप डिलीवर नहीं कर पाते, तो फिर एक रेस हो जाती है जिसमें आपका हारना लाजमी है। तो उतना ही करने की कोशिश करें और उतना ही दर्शाने की कोशिश करें जितना हम कर सकते हैं। मधुरता जो वहाँ के लोग हैं और जो वहाँ के संबंध हैं उनके साथ होनी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मधुरता नहीं होगी तो हमें काम करने में मज़ा नहीं आएगा, और हमेशा ये लगता रहेगा कि दूसरा मुझसे आगे तो नहीं बढ़ रहा।
पर रियलिटी तो ये है कि कंपटीशन तो है ही। आज अगर हम बात करें ऑफिस में, एक साथ में सेम पोस्ट पे कम से कम 4 से 5 और लोग होते हैं, मिनिमम में बात कर रही हूँ, कई बार उससे भी ज़्यादा। ऐसे में कंपटीशन तो है ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द ईयर बेस्ट पर्सन को अवार्ड भी मिलता है, आजकल तो पर्क्स भी मिलते हैं। ऐसे में हर इंसान चाहता है कि मैं बेस्ट बनूं, मैं अपने काम में सबसे बेस्ट रहूं। तो ये जो प्रेशर है टू बी द बेस्ट, ये किस हद तक सही है, और अगर नहीं है तो क्या सही है?
हर व्यक्ति हर क्षण बेस्ट नहीं हो सकता। अगर एक ही पोस्ट पे एक ही बैकग्राउंड के 4 लोग जैसा आपने कहा वो हैं, तो किसी दिन कोई बेस्ट होगा, किसी दिन कोई बेस्ट होगा। अगर उसको एक गेम के रूप में देख के चलें और मिनिमम स्टैंडर्ड जो हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, अपनी जितनी सक्षमता है उसे ज़रूर दें, लेकिन दूसरे ने कितनी दी और वो आप पीछे मुड़ के हर समय देख रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये जो परसेंटेजेस और पर्क्स और ये सब चीज़ें हैं, ये लंबे समय तक नहीं चलती। ये कुछ देर के लिए व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं, लेकिन अगर वही मोटिवेशन होती है तो उसकी वजह से इंसान ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकता, एक्चुअली एफिशिएंसी कम हो जाती है। और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये देखती हैं कि व्यक्ति की चीज़ों को डिलीवर करने की क्षमता कितनी है और वो कितना दे रहा। हर समय उसने दिया या नहीं दिया ये आमतौर पर देखा भी नहीं जाता। ये फियर्स जो हैं हमारे अपने अंदर के क्रिएटेड होते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद मेरी जॉब चली जाए, अगर जॉब चली जाएगी तो जो मैंने नई गाड़ी या नया मकान EMI पे खरीदा है वो कैसे चलेगा, और अगर ऐसा होगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग हंसेंगे तो उसके बाद मुझे और कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ये सब मन के अपने फियर्स होते हैं। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं जिसको अपना काम मालूम है तो आपको काम कहीं ना कहीं मिलता रहेगा, और ना हो तो आज के समय में और बहुत ऑप्शंस हैं, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो वो डर जो हैं वो डर आमतौर पे हमारे अपने क्रिएटेड होते हैं, सच्चाई नहीं होती। और अगर उसी के साथ हम जी रहे हैं और रोज़ रात को वही सो रहे हैं और सुबह उठ के हम सोच रहे हैं कि आज के प्रेशर में कौन आगे भाग रहा है, तो फिर काम तो कोई भी नहीं कर रहा।
करेक्ट।
तो काम का फोकस काम होना चाहिए, उसमें किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, इट डजंट मैटर। दूसरा, अगर आपने बहुत सालों को 3 या 4 या 5 साल में कंप्रेस करने की कोशिश की है तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। आम को पकने में साल लगता है, 3 महीने में आम नहीं पक सकता, और जो पकने की कोशिश की जाती है वो आमतौर पर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो जो सहज होता है वही अच्छा है, और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। व्हाट वी आर नाउ सीइंग इज कि काम के प्रेशर्स की वजह से, चाहे वो कुछ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ के रूप में देखते हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, टेंशन, हेडेक, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि लगातार थकान रहना, बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाना, काम पे फोकस ना कर पाना, एंक्शस रहना, ये सोचना कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, हीन भावना का पैदा होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ कई बार लोग रोज़मर्रा के जीवन में जीते हैं
जी।
तो जब वो आप कर रहे हैं तो आप अच्छा काम वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना लक्ष्य ठीक रखें, और वो लक्ष्य अगर चल रहा है तो धीरे धीरे मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम काम करना बंद कर दें, इसका ये मतलब है कि हम ऑप्टिमम तरीके से अपनी बेस्ट पोटेंशियल को और बैलेंस में रख के जीवन को चलाएं और संबंधों को ध्यान दें, तो हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। और कई बार ये होता है कि मन मुटाव इतने होने शुरू हो जाते हैं, झगड़े इतने होने शुरू हो जाते हैं, बाहर से हम कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं वो काम में हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती, तो उनको साइड पे कर देना ज़रूरी हो जाता है।
डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी नहीं रही है, एक जो देखा जाता है, या फिर स्टेबिलिटी नहीं रही है, वो जल्दी जल्दी जॉब चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंट जॉब चेंज के वजह से कहीं ना कहीं उनका जो परफॉर्मेंस है उस पर भी असर पड़ता है, और उनका जो प्रोफाइल है, जो सीवी है, उस पर भी असर पड़ता है, लेकिन फिर भी वो फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज ही करते रहते हैं। ऐसे में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसका रियल तरीका कौन सा है, किस तरह से वो अपने आप को इन जो जॉब चेंज है इस चीज़ से रोक सके।
देखिए, जॉब चेंज अगर किसी कारण से है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो आप टॉप मोस्ट कर सकते हैं वो आपने कर लिया, और अब आपको लगता है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन भी समझती है कि आप जितना दे सकते थे आपने दिया, अब आप किसी और जगह पे ज़्यादा सक्षमता से काम कर पाएंगे, दैट इज़ ऑल राइट। लेकिन थोड़े ही दिन में एक डेजिग्नेशन लिया, कुछ पे पैकेट या पर्क्स लिए, और जैसे ही वो हुआ अब आप दूसरी जगह पे चले गए। दूसरी जगह का मतलब है नए लोग, नया काम, और हर जगह पे आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो वो सारी रेस जो है वो इसी चीज में चलती रहती है, और एक स्टेज के बाद आमतौर पे वो लोग पाते हैं कि उनकी अच्छे काम को कर पाने की क्षमता कम हो जाती है। और जैसे ही वो होता है, या तो अब उन्हें और ज़्यादा तेज़ भागना पड़ेगा और उनकी सेहत पे शारीरिक मानसिक रूप से असर पड़ेगा, या कई बार ज़िंदगी का खोखलापन उन्हें महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रेस में भाग रहे हैं, रेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, रेस की वजह से अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कई बार अगर आप पूरी तरह से कोई चीज़ नहीं कर पाते, और आपने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखे हैं अपने लिए, अचीव करने के लिए कुछ इम्पॉसिबल टारगेट्स रखे हैं, तो वो हीन भावना को पैदा करता है, वो स्टेग्नेंसी के साथ साथ डिप्रेशन को पैदा करता है, ना कर पाने की एंजाइटी को पैदा करता है, इन सब को कम करने के लिए कई बार एडिक्शंस को जन्म देता है, या कई बार उसकी वजह से जो आपके रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, उनमें फ़र्क पड़ता है, या दूसरों के साथ संबंध मधुर नहीं रहते, झगड़े होते रहते हैं, या वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस रेस को वो भागते रहेंगे तो ज़्यादातर तक भाग नहीं पाएंगे, और ये 5 या 7 साल की रेस नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का सफ़र है।
करेक्ट।
और इस सफ़र का अगर मज़ा लेंगे तो लंबे अरसे तक चलेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे। आजकल हम देखते हैं कि 30-35 वर्ष की उम्र में लोगों का बर्न आउट शुरू हो गया, वो चाहते हैं कि पैसा बनाएं और उसके बाद काम ना करें।
पर डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ होती है, वो होती है हाइक। उन्हें हाइक मिल रही है, अगर पैसा अगर हर पायदान पर उन्हें मिल रहा है ज़्यादा, तो क्यों वो उस वक्त अगर अपने जॉब को चेंज करने, तो उसमें खराबी क्या है?
खराबी कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आप कितने हद तक उस चीज़ को ले पाएंगे। अगर वो आपके लिए बोझिल है हर समय, तो ऑब्वियसली वो लंबे अरसे तक नहीं चलेगा।
करेक्ट।
और उसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि आप अपनी क्षमता को देखें, कहाँ जाना चाहते हैं उसको देखें, और वो सफ़र कितनी देर में तय हो पाएगा इसको देखें, और उसके अंदर डबल कर दें। अगर आप 7 साल का सोच रहे हैं तो 15 साल का सोच के चले, क्योंकि बाहरी फैक्टर्स हैं जिनको आपने ध्यान में लिया ही नहीं। आपने सोचा कि मैंने आज ये चीज़ मान ली कि 7 साल में मुझे ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन बाहर से भी तो फैक्टर्स आएंगे,
करेक्ट,
वो भी, और जिंदगी में और बहुत चीजें हो रही हैं, वो चीजों के लिए अगर आपने टाइम नहीं दिया तो 10 साल के बाद पता लगेगा कि इसमें तो सक्सेसफुल है बाकी किसी चीज में भी नहीं,
करेक्ट।
तो वो चीजों के बैलेंस को लेके चलना है, एंड एक्चुअली सिर्फ अगर बहुत पैसा है या सिर्फ बहुत पोजीशन है तो वो किसी खुशी की गारंटी नहीं है,
करेक्ट।
खुशी की गारंटी सिर्फ ये है कि आप जो करते हैं उसे एंजॉय करें, जो आप करते हैं उसे अच्छे रूप से करें ताकि आपका भी सम्मान बढ़े, दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करें और उस खुशी को आप दूसरों में बांटें, खास तौर पे अपने परिवार और अपने संबंधों में
जी।
तो अगर वो होगा तो ज़रूर, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो वो लंबे अरसे तक नहीं चलेगा, और क्योंकि नहीं चलेगा और बाद में जाके आपको झटका लगेगा, इसीलिए अपनी स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल कर।
डॉक्टर साहब, ये बात मुझे इतनी सही लगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चल रहे होते हैं इन अ रिलेशनशिप, हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं है, सच्ची खुशी किसी पोस्ट में नहीं है, सच्ची खुशी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, संतुष्टता से है, और जितना हम दूसरों को बांटेंगे उतना ही हमारे अंदर खुशी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल है हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं।
जरूर, वेलकम।
मेरा नाम भूषण विलास पालांडे है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। एज अ प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। पीपल आर थिंकिंग दैट कि एज एन आर्किटेक्ट शुड बी अ स्टेबल प्रोफेशन, देर आर सो मेनी यू नो कॉम्पिटिशन्स आर देयर, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, ग्लोबल वार्मिंग, रियल एस्टेट फैक्टर, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हाउ टू ओवरकम ऑन दैट, इस दुविधा में मैं हूँ। तो इज देर एनी सोल्यूशन कि इसको ओवरकम करके मैं आगे बढ़ पाऊँ टू अचीव माई गोल, टू अचीव माई टारगेट इन अ प्रॉपर वे।
मैं एक्चुअली वर्किंग वूमन हूँ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे लेडीज़ होने से फेस करना पड़ता है। मेरे जो कलीग वगैरह होते हैं उनसे भी मुझे बहुत सारी तकलीफ होती है। कई बार ऐसे सोचती हूँ कि ये जॉब तो छोड़ दूँ या क्या करूँ, उसके लिए मुझे सोल्यूशन चाहिए आपकी तरफ से।
डॉक्टर साहब, इनका सवाल कुछ इस प्रकार है, ये एक आर्किटेक्ट हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो बाहर की दुनिया है वो इसे बहुत ही आर्किटेक्ट को बहुत अच्छा स्कोप वाली प्रोफेशन मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद बहुत सारे कंपटीशन को, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं एज एन आर्किटेक्ट, जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? और दूसरा सवाल ये है कि वो एक वर्किंग वुमन है और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही हैं, बहुत सारे उनके कॉलीग्स हैं जिनसे उन्हें शायद कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा होगा, शायद किसी तिरस्कार का, तो ऐसे में क्या किया जाए?
देखिए, कोई भी प्रोफेशन पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता, उसे स्टेबिलिटी हम देते हैं। बाहरी कई कारण रहेंगे, इन्होंने कहा कि मेरी मंजिल जो है मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं, तो क्या इन्होंने कुछ मंजिल किस समय तक पानी है उसके बारे में भी सोचा है? और शायद अगर इन्होंने सोचा है तो वो रियलिस्टिक गोल ना हो, और ये भी हो सकता है कि इस समय वो पॉसिबल ना हो। हर चीज़ में फ्लक्चुएशंस होती हैं, इन्होंने खुद कहा कि रियलिटी मार्केट के अंदर इस समय फ्लक्चुएशंस है, तो जब सबके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस प्रोफेशन में इनके लिए भी होंगे। तो उन बाहरी फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के चलना होता है, हम सिर्फ अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं मापदंड दे सकते हैं
जी।
प्लस अगर ये प्रोफेशन में हैं और ये लाइफ के लिए प्रोफेशन है और उसके लिए इनको मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये देखें कि उसमें वो नयापन कैसे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो उसमें क्रिएटिविटी लाएंगे तो शायद इनका स्कोप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक ही ढर्रे के ऊपर हम चलते रहेंगे तो फिर जैसा दूसरों के साथ हो रहा है वैसा ही आपके साथ होगा। तो कहीं ना कहीं अपने जो गोल हैं उसका सही आंकलन कर लें, उसमें क्रिएटिविटी लाएं, नयापन लाएं, और अगर हो सके तो कई बार हम वेट करते हैं कि बाकी लोग मेरे पास आए। कई बार कुछ प्रोफेशंस में आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत हो उसे लें, और अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन फिर भी जीवन ठीक ठाक चल रहा है, बेसिक चल रहा है, तो ये शायद एक फेज होगा जिंदगी का, और कुछ समय के बाद बहारें फिर से आएंगी, और जब ऐसा होगा तो जिंदगी फिर से चलनी शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल।
महिलाओं के लिए काम करना जरूर एक मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कई बार उनकी एक्सेप्टेंस एज अ मेल कोलीग एंड स्पेशली एज अ मेल बॉस नहीं होती है, क्योंकि घरों में आमतौर पे उनको वो इज्जत का दर्जा अगर ना मिले तो शायद ऑफिस में भी लोग या तो कटुता से बात करते हैं या तिरस्कार करते हैं, या कई बार कुछ कमेंट्स होते हैं और कई बार कुछ सेक्सुअल कमेंट्स भी होते हैं, और ये चीज़ उनको कई बार महसूस होती होगी। कई बार जो घर का और ऑफिस का बैलेंस है, मान लीजिए बच्चा बीमार हुआ तो इनको घर में रहना पड़े, और फिर ऑफिस में लोग कहते हैं कि इनका तो टाइम पास के लिए ऑफिस है, ऐसा सुना जाता है कई बार।
बिल्कुल।
या मान लीजिए वो उतना ही अच्छा काम करती हैं जितना कि कोई मेल कुलीग करता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो प्रशंसा नहीं मिलती जितने कि एक मेल कुलीग को मिलती है। तो आज की डेट में अगर बात सर से ऊपर गुजर जाए कमेंट्स के रूप में या डिस्क्रिमिनेशन के रूप में, तो उसके लिए लॉज हैं। लेकिन ज़रूरत एक है कि जो महिलाएं काम करती हैं वो अपनी दूसरी महिलाओं की मदद करें। कई बार दूसरी महिलाएं मदद नहीं करती और वो अकेले पड़ जाते हैं। प्लस कहीं ना कहीं आपको कहना पड़ता है कि अब और नहीं, बस। और वो कहना ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो एक सभ्य रूप से कहा जाए, लेकिन कि आप गलत बात को सहेंगे नहीं, ये कहना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि ये मल्टीपल रोल्स कर रही हैं, इसमें खुश होना चाहिए। ऐसे कई रोल्स हैं जो मेल्स बिल्कुल नहीं कर पाते, जो कि ये एज अ वुमेन कर रही हैं, तो अपने अंदर अपने आप को सक्षम महसूस करें। अगर हम ये गिने कि महिला के रूप में जो माँ का या पत्नी का रोल वो कर रही हैं, जो कि कोई मेल नहीं कर पाता, तो वो ही उनको एक मोटिवेशन देगा ये समझने के लिए कि ऑफिस अपनी जगह, लेकिन ऑफिस और घर का बैलेंस जो ये बना पा रही हैं, और ऑफिस में प्रॉब्लम्स के बावजूद जैसे वो काम को कर पा रही हैं, लेकिन उसमें एक बात ज़रूर हो जाती है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं काम के, वो चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को मेंटेन करने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर वो अपना स्टैंडर्ड बना के रखेंगी तभी वो किसी को कह पाएंगी, अगर उस स्टैंडर्ड में बहुत कमी है तो शायद वो खुल के किसी को कह भी ना पाए, लेकिन अगर है तो उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने में सक्षम हैं। और महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा मैं कहूँगा जीवन को संभालने में सक्षम।
डॉक्टर साहब, आपकी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई है कि प्रोफेशनल लाइफ अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये मानना तो हम इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर चेंज आ रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी प्रोफेशन को चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कन्फ्यूजन जिसका कोई सारांश नहीं निकल सकता। एक ही जगह पर रुके, उसमें अपना 100% दे, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें उन्हें ग्रूमिंग मिलने लगेगी और वो और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
प्लेजर इज माइन।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि प्रोफेशनल लाइफ में वैसे तो बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका फल अगर हम सही मायने में चाहते हैं तो हमें उसे अपना 100% देने की ज़रूरत है। एक बार बार जॉब चेंज करना, ये अपने आप में एक बहुत ही गलत तरीका है ज़िंदगी को जीने का। आप एक जगह पर रुक करके अगर वहीं पे प्रमोशन को धीरे धीरे अपने पास आने देंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर में बहुत ज़्यादा संतुष्टता आने लगेगी। साथ ही साथ आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।